बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है गामदी के साथ और मैं हूँ ज़ुनैरा। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
कहना है कि अम्बिया कराम जो है वो वक्त के निज़ाम को जो है मौजू नहीं बनाते, सिस्टम को मौजू नहीं बना रहे होते, फर्द को मौजू बना रहे होते हैं। तो जिन साहब का ये सवाल मैं आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ, उनका ये कहना है कि ये तो गलत बात है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगर हम मिसाल लें तो उनका नमरूद के पास जाना एक तरह से सिस्टम को चेंज करने के मुताबिक था, क्योंकि जो नमरूद था वो सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा था। और एक इनके अल्फाज अगर मैं उसी तरह पढ़ दूं जिस तरह इन्होंने लिखे हैं, वो लिखते हैं कि हज़रत इब्राहिम का मसला अगर निज़ाम ना होता तो वो बुतों को ना तोड़ते। अगर गामदी साहब से ये सवाल किया जाता तो शायद वो फरमा देते कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुतों को नहीं तोड़ना चाहिए था, इसलिए कि ये तोड़ फोड़ तो इंकलाबियों का काम है।
ये उनका हुस्न बयान है। मैं आपके सामने इस हकीकत की वजाहत करता हूँ कि देखिए, जब मैं ये कहता हूँ कि मजहब का मौजू फर्द है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि फर्द अपनी शख्सियत से मुजर्रद होकर उसका मौजू है। फर्द अपनी पूरी शख्सियत में मौजू होगा। अभी मैंने आपके एक सवाल के जवाब में अर्ज किया कि अगर मुझे मुखातब किया जाएगा तो मैं क्या करता हूँ। मैं बाप हूँ, मैं शौहर हूँ, मेरा एक घर है, मैं कहीं कारोबार करता हूँ, मैं कहीं लोगों के साथ मिलता हूँ, ये हो सकता है कि मैं सियासतदान भी हूँ। मेरी सारी शख्सियत दीन में मेरे पास आएगी और वो हर जगह मेरे अखलाक की तस्वीर चाहेगा। यानी जिन चीजों से दीन को दिलचस्पी है वो जहां जहां पाई जाएगी, सियासत में होंगी, मईशत में होंगी, माशरत में होंगी, वो सबको हदफ बनाएगा। इसी तरह अम्बिया अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, यानी वो अपने माशरे के अंदर जो सबसे ज्यादा अशफ़ रसूख रखने वाले लोग होते हैं सबसे पहले उनको मुखातब करते हैं। जिस जमाने में अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज्यादातर बेसत हुई है उसमें बादशाही निज़ाम था। बादशाही निज़ाम में अगर आप किसी माशरे तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उन्हीं लोगों से बात करना होती है जो सोसाइटी में असर रसूख रखते हैं,
इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।
वहाँ निज़ाम को मौजू नहीं बना रहे, उस फर्दी को मौजू बना रहे हैं, उसको दीन की दावत दे रहे हैं, उसकी तस्वीर चाहते हैं, उसका तज़किया चाहते हैं। आप देखिए, फिरौन के बारे में कुरान मजीद ये कहता है कि उसके पास जाओ सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को, हो सकता है कि वो समझ जाए। तो असल में फर्द को सवार देना ये उनका असल मौजू है। जिस वक्त फर्द समरता है तो फिक्र क्या चीज है, फर्द से जरूर पजीर होती है। निज़ाम क्या चीज है, उसी से बनता है। जब फर्द समर जाता है तो उसके असरात निज़ाम पर भी पड़ते हैं। सबसे पहले वो फर्द को मुखातब करेंगे और उन लोगों को मुखातब करेंगे जिन लोगों को मेरा नुकता नजर जानना है, वो कानून दावत का मुताला करें। इसी उन्वान से मैंने अपना नुक्ता नजर, दावत क्या है, अम्बिया अलैहिस्सलाम की दावत क्या है, किन पहलुओं से तकसीम होती है, वो सब अपनी किताब में बयान कर दिया है। उसमें खास तौर पर इसको मौजू बनाया है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम या कोई और दाई, उसे सबसे पहले सोसाइटी में असर रसूख रखने वाले तबकात को मुखातब करना होता है। इसलिए कि जब तक उनके जहन और फिक्र को मफतू न कर लिया जाए या मफतू होते दिखा ना दिया जाए तो आम लोग मतवज्जे नहीं होते। लेकिन अम्बिया अलैहिस्सलाम का मकसद भी कभी नहीं होता कि वो खुद हरीफ बन के खड़े हो जाए, वो खुद इक्तदार पर कब्जा कर ले। वो किसी को माजूर करने के लिए नहीं आते, वो उसकी इस्लाह करने के लिए, उसको तब्दील करने के लिए आते हैं। देखिए, इस वक्त मिसाल के तौर पर दो नुकता नजर होंगे ना। एक ये है कि आप एक सियासी जमात बनाएं या आपको जथा मनज़म करें और आप बंदूक लेकर खड़े हो जाएं या बैरक के लिए आप लोगों के पास जाएं और उनसे बात करें। इन सारी चीजों के बारे में लोग गुफ्तगू कर सकते हैं, क्या जायज है क्या नाजायज है, लेकिन ये तरीके होंगे। एक दाई क्या करेगा, वो इस वक्त ये देखेगा कि सियासत में कौन लोग फाल हैं, कौन लोग मुल्क का नज़म रस चला रहे हैं। जाहिर है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपकी फौज है, आपके असातिज़ा हैं, आपके दानिश्वर हैं, तो उनको मुखातब करेगा, उनके जहन और फिक्र को बदलेगा। यानी अम्बिया अलैहिस्सलाम का तरीका ये नहीं है कि वो दूसरों को माजूल करके उनकी जगह लेना चाहते हैं। असल में जगह लेने का अमल है जो खुरूज, बगावत और इंकलाब में डलता है। वो ये नहीं करते, वो ये करते हैं कि वो मुकाबिल में आके दावत पेश करते हैं और लोगों को तब्दील करना चाहते हैं, उनके जहन और फिक्र को। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी यही किया है, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही किया है, रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया। यानी अपने जमाने के आयान और अकादर के सामने अपनी दावत रखी है, अपना पैगाम रखा ताकि वो तब्दील हो जाए। इसी को दावत, इंजार और बशारत के अल्फाज में कुरान मजीद बयान करता है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बुत तोड़े थे वो बुतों के इस्तिसाल के लिए नहीं तोड़े थे, वो इस्तदलाल के लिए तोड़े थे। यानी वो अपनी कौम के लोगों को ये बताना चाहते थे कि अहम को ये क्या हरकत कर रहे हो। तो इस्तदलाल और चीज है और इस्तिसाल और चीज है। अगर वो इस्तिसाल के लिए बुत तोड़ दे तो मुकाबले में आते, वो रात के वक्त जाकर ना तोड़ते, वो खामोशी से तोड़ने के बाद बड़े बुत के कंधे के ऊपर कुल्हाड़ा ना रखते। ये इस्तदलाल था और बहुत खूबसूरत इस्तदलाल है। तो इस्तदलाल के लिए बाज़ औक़ात आपको कोई अमली तरीका भी इख्तियार करना पड़ता है। گویا جو دعوت وہ پیش کر رہے تھے اس کے مخاطبین کی غلطی واضح کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. اس سے میری بات کی تائید مزید ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام دلیل دیتے ہیں, اپنی بات پیش کرتے ہیں, ذہنوں کو مفتو کرتے ہیں, فکر کو تبدیل کرتے ہیں.
یہ جو انہوں نے بت توڑے تھے اور کلہاڑا جا کے سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا تھا, یہ سارے توڑ دیے تھے اور ایک چھوڑ دیا تھا کہ کچھ توڑے تھے؟ کیا وجہ کیا تھی؟ اس میں کیا پنہاں تھا؟ وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟
درحقیقت وہ اپنی قوم کو اس کی حماقت اور بیوقوفی پر توجہ دلانا چاہتے تھے. یعنی یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے جس کو پوج رہے ہو. اور پھر اس کے بعد بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کے انہوں نے در حقیقت یہ پیغام دیا کہ یہ اپنے ساتھیوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے.
تو تمہاری حفاظت کیا؟
جب میں ان کو توڑ رہا تھا تو اس وقت یہ کچھ بھی نہیں کر سکا, بے بسی کے ساتھ دیکھتا رہا ہے, میں نے سب کے سر اڑا دیے ہیں اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہے, اسے اتار بھی نہیں سکا. اور اگر میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ بل فالا وہ کبیر ہوں, ذرا پوچھو, شاید بڑے ہی نے یہ حرکت نہ کی ہو, تو تم بھی یہ کہہ رہے ہو کہ یہ تو نہیں بولتے. آپ دیکھیں نا, وہ مکالمہ قرآن میں نقل ہوا ہے. تو یہ بت تمہارے اوہام کا نتیجہ ہے, ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. اسمان سمعت ہوا, یہ نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے استدلال کر رہے ہیں, اور آپ جانتی ہیں کہ استدلال کے لیے بعض اوقات الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, بعض اوقات کوئی چیز عملی طور پر کر کے دکھائی جاتی ہے. تو بتوں کی بے بسی کو اور بتوں کی حماقت کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. میں تو صرف اس سخن آشنائی کی دعوی دے سکتا ہوں کہ وہ اس کو بتخانے کو توڑنا یا بتوں کا استحصال کرنا کہہ رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام جب تک ان کے پاس اقتدار نہیں آتا اس وقت تک اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کرتے. یہ اصل میں دلیل دینے کا ایک طریقہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا, اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن مجید سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کے استدلال کے طریقے استدراج کے ہوتے تھے, یعنی وہ اپنے مخاطب کو درجہ بدرجہ اس جگہ لے آتے تھے جہاں وہ بے بسی کے ساتھ دیکھتا رہ جاتا تھا.